सोचिए कि किसी इंसान को एक बहुत ही खास या अति विशिष्ट क्लब में एंट्री लेनी हो।
हाँ बिल्कुल, एक बहुत ही एक्सक्लूसिव जगह।
सही, तो आमतौर पर वहां का एक सेट नियम होता है ना, एंट्री के लिए एक भारी फीस चुकानी पड़ती है, या फिर इंसान का रुतबा इतना बड़ा हो कि दरवाजे खुद ब खुद खुल जाएं।
एकदम, एक तयशुदा हिसाब किताब होता है। कोई अपना पैसा या प्रभाव दिखाता है और बदले में उसे वो एक्सेस मिल जाता है।
हाँ, ये समझ में आने वाली बात है, दुनिया के ज्यादातर कानून इसी तरह काम करते हैं। लेकिन तब क्या हो जब उस क्लब का दरबान ये कहे कि एंट्री फी पैसा या रुतबा नहीं है।
ओ, तो फी क्या है वहां?
फी ये है कि अंदर आने के लिए अपना सब कुछ बाहर छोड़कर आना होगा, आपका बैंक बैलेंस, आपका सामाजिक स्तर और सबसे जरूरी, आपका घमंड।
वाह, ये एक ऐसी शर्त बन जाती है जो पूरी तरह से अजीब और बहुत मुश्किल लगती है।
बिल्कुल, और वहीं से धर्मों, सफलता और अधिकार को देखने का हमारा आम नजरिया पूरी तरह से धुंधला हो जाता है,
जी
प्राचीन दौर में भी और आज भी।
सही कहा आपने, लोग अथॉरिटी और सक्सेस को एक अलग ही चश्मे से देखते हैं जो अक्सर शक्ति और धन से जुड़ा होता है।
और यही हमारी इस विस्तृत चर्चा का मुख्य विषय है। आज हम उन नोट्स और विश्लेषण पर गहराई से उतर रहे हैं जो डॉक्टर क्रेग कीनर ने मैथ्यू 19 से 22 के अध्यायों पर दिए हैं।
और ये स्रोत किसी उबाऊ या बोरिंग किताब जैसा बिल्कुल नहीं है।
अरे बिल्कुल नहीं, इसमें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों, ऐतिहासिक तथ्यों और मानवीय मनोविज्ञान का एक ऐसा बेहतरीन मिश्रण है जो हमारी बनी बनाई धारणाओं को पूरी तरह पलट देता है।
हाँ, इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य ही यही समझना है कि कैसे उस दौर की मान्यताओं को उल्टा कर दिया गया था।
तो ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के इसको विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं उस किस्से से जहां एक अमीर और जवान नेता अनंत जीवन पाने के लिए निर्देश मांगने आता है।
हाँ, जिसे द रिच यंग रूलर कहा जाता है।
सही, अगर आम जिंदगी में सोचें तो अगर कोई इतना प्रभावशाली व्यक्ति किसी लीडर के पास आए और उसका अनुयायी बनना चाहे तो वो लीडर उसके लिए रास्ते आसान करेगा, है ना?
आमतौर पर तो यही होता है, कोई भी नेता ऐसे अमीर फॉलोअर को खोना नहीं चाहेगा।
पर यहां बिल्कुल उल्टा होता है। जीसस अपने स्टैंडर्ड को बिल्कुल कम नहीं करते, वो उस व्यक्ति से सीधा कहते हैं कि अपनी सारी संपत्ति बेच दो।
वही क्लब वाली बात हो गई।
हाँ वही, आखिर कोई लीडर अपने फॉलोअर्स को जानबूझकर इतनी मुश्किल में क्यों डालेगा कि वो सच में वहां से चलाई जाए?
इसको समझने के लिए हमें उस समय के ऐतिहासिक परिवेश में जाना होगा। उस दौर में इस तरह सिखाने का तरीका खासकर प्राचीन ग्रीक दार्शनिकों के बीच काफी आम था।
अच्छा, दार्शनिक मतलब फिलोसोफर्स के बीच।
हाँ, एक किस्सा एंटिस्थनीज नाम की फिलोसोफर का आता है।
जी
जब डायोजनीज उनका शिष्य बनना चाहता था
जी
तो एंटिस्थनीज ने उसे बार बार भगाने की कोशिश की,
वेट, मतलब भगाने की कोशिश से आपका क्या मतलब है?
यानी उसे फिजिकली दूर किया।
पर डायोजनीज डटा रहा और अंत में उसका सबसे बड़ा शिष्य बन गया।
ओ, तो शुरुआत में ही इतनी कड़ी परीक्षा लेना ताकि ये तय हो सके कि सामने वाला कितना संजीदा है।
बिल्कुल सही, जीनो का भी एक उदाहरण आता है जो अमीर युवाओं को तुरंत नकार देते थे अगर उनके बर्ताव में थोड़ा सा भी घमंड झलकता था।
वाह, ये तो काफी स्ट्रिक्ट है। और डायोजनीज ने तो अपने एक फॉलोअर जिसका नाम क्रेट्स था, उसे यहां तक कह दिया था कि अपना सारा पैसा समुद्र में फेंक दो, तभी तुम मेरे शिष्य बन सकते हो।
अपना सारा पैसा समुद्र में फेंक दो, ये तो बहुत एक्सट्रीम
है ना? तो अगर हम इस हिस्ट्री को देखें तो फोकस सिर्फ पैसों को खत्म करने पर नहीं था, मुख्य उद्देश्य ये था कि एक इंसान की सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है।
अच्छा, तो उस अमीर नेता की प्रायोरिटी उसकी दौलत थी, इसलिए उस दौलत को बीच से हटाना जरूरी था।
और यहां एक और बहुत ही मशहूर मुहावरा निकल कर आता है, ऊंट का सुई की आग से निकलना।
अरे हाँ, मैंने सालों से अलग अलग किताबों में पढ़ा है और बहुत से टूर गाइड्स भी जेरूसलम में यही बताते हैं।
कि वहां एक छोटा सा दरवाजा था, है ना?
हाँ, वही जिसका नाम नीडल्स आई या सुई की आंख था, और वहां से ऊंट को अपने घुटनों के बल झुककर निकलना पड़ता था। लेकिन इन नोट्स को पढ़ने के बाद मुझे बड़ा झटका लगा।
खुलासा हुआ ना कि ये पूरी कहानी एक सफेद झूठ है।
हाँ, एकदम सफेद झूठ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ शुरू में।
और ये झटका लगना स्वाभाविक है क्योंकि ये कहानी सदियों से ऐसी ही सुनाई जा रही है, पर सच्चाई ये है कि वो दरवाजा दरअसल मिडिल एजेस में बना था,
यानी जीसस के दौर के सैकड़ों साल बाद।
बिल्कुल, सुई की आंख किसी दरवाजे का नाम नहीं था। प्राचीन साहित्य में ये एक शब्दिश या लिटरल मुहावरा था। एक सुई का छेद जिससे धागा डाला जाता है, उसमें से ऊंट का निकलना असंभव है।
तो इसका मतलब ये मुहावरा किसी कॉम्प्रोमाइज या झुककर निकलने की बात नहीं कर रहा था, ये एक सीधी चेतावनी थी कि असंभव को असंभव ही समझा जाए, है ना?
एकदम। डीट्रिक बॉनहॉफर, जो कि एक प्रसिद्ध विचारक थे, उनका हवाला देते हुए डॉक्टर कीनर यहाँ समझाते हैं कि हमें इस मुश्किल नियम को आसान करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।
हाँ, इंसान की फितरत होती है ना लूपहोल्स ढूंढने की।
सही कहा। संदेश यही था कि जो लोग अपने पैसों पर पूरा भरोसा करते हैं, उनका उस आध्यात्मिक साम्राज्य में जाना नामुमकिन जैसा है।
पर एक सेकंड, क्या इसका मतलब यह है कि उस समय अमीर लोगों के लिए सारे रास्ते पूरी तरह बंद थे?
नहीं, ऐसा नहीं है।
क्योंकि नोट्स में कुछ ऐसे लोगों का जिक्र है जिन्होंने सब कुछ दांव पर लगाया था, जैसे ज़ैकियस और जोसेफ ऑफ अरिमथिया का भी तो उदाहरण है।
हाँ, और जोसेफ ऑफ अरिमथिया बिल्कुल आम इंसान नहीं थे, वो सैनहेड्रिन के एक मुख्य सदस्य थे।
सैनहेड्रिन वही जो उस वक्त का सबसे बड़ा यहूदी दरबार था।
बिल्कुल, उसमें बैठने वाले लोग समाज के सबसे ताकतवर और अमीर लोग थे।
और उन्होंने पब्लिकली एक ऐसे व्यक्ति को दफनाने के लिए अपनी जान और प्रॉपर्टी दोनों को रिस्क पर डाल दिया, जिसे रोमन साम्राज्य ने देशद्रोह के जुर्म में मारा था।
ट्रीजन के जुर्म में, हाँ। उस जमाने में किसी बागी की लाश मांगना अपने आप में मौत को दावत देना था।
रोम के कानून के हिसाब से तो लाश को लटका छोड़ दिया जाता था, है ना, एक चेतावनी के तौर पर।
सही कहा। जोसेफ ने अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा और शायद अपनी जान का भी जोखिम उठाया। तो हाँ, कुछ ऊंटों ने उस सुई की आग से निकलने का सफर तय किया, पर कीमत बहुत भारी चुकाई।
यहाँ पर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर इस नए साम्राज्य में आना इतना मुश्किल है, तो अंदर आने के बाद कृपा या ग्रेस कैसे काम करती है?
ये एक बड़ा सवाल है, और यहीं पर लोगों का दिमाग घूम जाता है।
हाँ, जैसे अंगूर के बाग यानी विनियर्ड वर्कर्स वाला किस्सा। एक मजदूर सुबह से कड़ी धूप में मेहनत करता है और दूसरा मजदूर शाम को आकर सिर्फ एक घंटा काम करता है,
और मालिक उन दोनों को एक समान मजदूरी देता है, एक दिनारियस।
अब अगर मैं इसको आजकल की कॉर्पोरेट एचआर पॉलिसी के हिसाब से देखूं, तो ये सरासर गलत और अनफेयर लगता है। मतलब मैं 12 घंटे काम करूं और मुझे भी उतने ही पैसे मिले,
तो आपको कैसा लगेगा?
मैं तो बवाल कर दूंगी।
आखिर ये कृपा या ग्रेस इतनी अन्यायपूर्ण क्यों लगती है?
ये गुस्सा आना बिल्कुल इंसानी फितरत है, लेकिन इसको थोड़ा विश्लेषण के चश्मे से देखते हैं। पहली बात, दिनारियस उस जमाने में एक दिन के गुजारे लायक मजदूरी होती थी।
अच्छा, यानी बेसिक मिनिमम वेज एक तरह से।
हाँ,
एक अमीर के लिए शायद कुछ ना हो, पर एक गरीब मजदूर के लिए इसका मतलब था कि रात को उसके बच्चे भूखे नहीं सोएंगे।
ओ, तो मालिक ने सुबह आने वाला को एक भी पैसा नहीं मारा?
बिल्कुल नहीं, उन्हें उनकी पूरी तयशुदा मजदूरी दी। समस्या मालिक की बेईमानी में नहीं थी, समस्या उस मजदूर की जलन में थी।
यानी उस मजदूर को इस बात का दुख नहीं था कि उसे कम मिला, बल्कि इस बात की जलन थी कि किसी और को उसके बराबर कैसे मिल गया, है ना?
सही पकड़ा। अगर हम इसको बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, एक अनंत ईश्वर की कृपा के रूप में, तो इसका अनफेयर होना ही सबसे अच्छी बात है।
कैसे? मतलब अनफेयर होना अच्छी बात कैसे हो सकती है?
सोचिए, अगर एक पवित्र ईश्वर के सामने सबको अपने कर्मों का बिल्कुल सही सही फेयर हिसाब मिलता, तो किसी भी इंसान का बचना तय नहीं था,
क्योंकि हम सभी में कमियां हैं।
एग्जैक्टली। कृपा का मतलब यही है कि आपको वो मिले जिसके आप हकदार नहीं हैं। मालिक उस आखिरी मजदूर के परिवार को भूखा नहीं मरवाना चाहता था।
वाह, तो यहाँ फोकस जेलसी पर नहीं बल्कि उदारता यानी जेनरोसिटी पर होना चाहिए। लेकिन ये इंसानी तुलना यानी कंपैरिजन की बीमारी हर जगह है ना?
हाँ, और यही दौड़ उस वक्त के फॉलोअर्स में भी थी।
जैसे वो किस्सा जहाँ जेम्स और जॉन की माँ आती हैं और सीधा अपने बेटों के लिए टॉप पोजीशंस मांगती हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट में। मैं तो सोच रही थी कि माँ क्यों आई ऐसी डिमांड करने।
उस दौर के सामाजिक ढांचों को समझना जरूरी है। प्राचीन काल में बड़ी उम्र की औरतों को ऐसे आग्रह करने की छूट थी।
अच्छा, तो ये कल्चरल चीज थी।
हाँ, अगर कोई जवान मर्द खुद जाकर मांगता तो उसे बगावत या घमंड माना जाता, ओल्ड टेस्टमेंट में भी जोआब नाम के सेनापति ने डेविड से बात करने के लिए एक औरत का सहारा लिया था।
ओह, तो ये एक तरह की डिप्लोमेसी थी।
पर उन्हें जवाब में क्या मिलता है?
उनसे पूछा जाता है कि क्या तुम मेरा कप ऑफ सफरिंग यानी दुख का प्याला पी सकते हो?
और उन्हें लग रहा होगा कि ये कोई राजशाही प्याला है जिससे ताकत मिल जाएगी,
जबकि दरअसल वो प्याला मौत और पीड़ा का प्रतीक था। जिन दायां और बायां स्थानों की वो मांग कर रहे थे वो किसी महल की कुर्सियां थोड़ी ना थी।
बिल्कुल नहीं। जब वक्त आया तो वो स्थान दो आम डाकुओं को मिले जिन्हें सूली पर लटकाया गया था।
यानी महानता का पूरा पैमाना ही पलट गया था। यहाँ डॉक्टर कीना ने एक बड़ा ही जज्बाती उदाहरण दिया है, एक आम औरत का जो घरेलू हिंसा या डोमेस्टिक अब्यूज की शिकार थी।
हाँ, और ये बहुत पावरफुल उदाहरण है।
उसका पति उसके साथ मारपीट करता था, पर उस औरत के अंदर सिर्फ नम्रता और प्रेम था। उन्होंने इसकी तुलना ओल्ड टेस्टमेंट की हैना से की है ना?
एकदम। हैना एक आम औरत थी जो अपने भारी दुख में मंदिर में दुआ कर रही थी, पर वहां का सबसे बड़ा धार्मिक नेता हाई प्रीस्ट ईली इतना असंवेदनशील था कि उसे लगा हैना नशे में है। असली अधिकार हमेशा सेवा और नम्रता से ही आता है।
और जब लीडर खुद इस सेवा भाव को जीतता है तो उसकी ट्रायम्फल एंट्री किसी आम राजा जैसी नहीं हो सकती थी, जिस पर हम अगले हिस्से में आते हैं।
हाँ, जब राजा राजधानी में आता है तो लोग उम्मीद करते हैं कि वो मिलिट्री स्टैलियन पर बैठकर आएगा,
पर यहाँ वो एक गधे पर यानी डोंकी पर आते हैं। और मुझे सबसे दिलचस्प बात ये लगी कि वो जानवर भी उधार मांगा गया था ना?
जी हाँ, प्राचीन रोम में एक व्यवस्था होती थी जिसे इम्प्रेसमेंट कहते हैं। रोमन सेना किसी भी नागरिक का जानवर सरकार के काम के लिए टेम्पररी जब्त कर सकती थी।
तो यहाँ उस अधिकार का इस्तेमाल तो हुआ, लेकिन सेना बनाकर हमला करने के लिए नहीं, बल्कि शांति से शहर में आने के लिए।
जी, एक शांत और नम्र राजा का आना। वहाँ ज़िखरिय्याह 9 की भविष्यवाणी का जिक्र है कि राजा एक गधी और उसके बच्चे पर बैठ के आएगा।
पता है, मुझे हमेशा ये कन्फ्यूजन होती थी कि कोई दो जानवरों पर एक साथ कैसे बैठ सकता है, पर नोट्स ने बताया कि ये तो हीब्रू भाषा की पोएट्री का स्टाइल है।
बिल्कुल, हीब्रू पोएट्री में एक नियम है जिसे पैरेललिज्म कहते हैं। इसमें एक ही बात को गहरा करने के लिए उसे दो अलग शब्दों में लगातार कहा जाता है।
ओह, तो भविष्यवाणी में एक ही जानवर था पर शब्दों को दो बार लिखा गया, पर ताकि किसी विद्वान को शक ना हो वहां दोनों जानवर मंगवाए गए।
ये तय कर रहा था कि ये राजा तलवारों से नहीं बल्कि शांति से राज्य करेगा।
ठीक है, पर अगर राजा इतना शांत है तो अगले ही पल वही राजा मंदिर के अंदर जाकर इतना बड़ा हंगामा क्यों कर देता है?
ये टेंपल क्लेंजिंग का किस्सा है।
हाँ, हम सोचते हैं कि ये हंगामा सिर्फ लालच या पैसे के विरोध में था, पर नोट्स पढ़ने पर मुझे झटका लगा कि ये उस मंदिर के स्ट्रक्चरल भेदभाव यानी सेग्रीगेशन के खिलाफ था।
इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है। प्राचीन मंदिर का आकार काफी भेदभाव भरा था। एक हिस्सा यहूदी मर्दों के लिए और सबसे बाहर का हिस्सा जेंटाइल्स यानी गैर यहूदियों के लिए था।
और वहां के नेताओं ने उन जानवर बेचने वालों की दुकानें उसी जेंटाइल्स के कोर्ट में लगवा दी थी, यानी जो लोग वैसे ही सोसाइटी से बाहर थे उनकी अकलौती शांत जगह को शोर शराबे वाला मार्केट बना दिया।
यहां तक कि वहां ऐसे पत्थर के साइंस लगे थे जिन पर लिखा था कि अगर कोई गैर यहूदी इस पॉइंट से आगे आया तो उसकी मौत होगी। इसे आर्कियोलॉजिस्ट जोसेफिस ने साबित भी किया है।
जब मैं ये पढ़ रही थी तो मुझे हिस्ट्री के नस्लिया भेदभाव या रेसिज्म की याद आई, जैसे अलग अलग रंग के लोगों के लिए अलग वाटर फाउंटेन्स होते थे। ये तो एक बड़ा ह्यूमन राइट्स प्रोटेस्ट था।
तुलना काफी सटीक है। जब हंगामा हुआ तो आइज़ाया का हवाला दिया गया कि मेरा घर सभी राष्ट्रों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा,
और जेरेमाया ने उसको डेन ऑफ रॉबर्स या डाकुओं की गुफा कहा।
और ध्यान दीजिए, गुफा वो जगह होती है जहां चोरी करने के बाद डाकू जाकर छुपते हैं और खुद को सुरक्षित मानते हैं।
यानी वहां के नेता बाहर गरीबों पर जुल्म करते थे और फिर मंदिर में आकर पूजा पाठ करके सोचते थे कि वो सुरक्षित है।
बिल्कुल, पर दिखावे का ये धर्म ईश्वर के न्याय को नहीं रोक सकता। डॉक्टर कीनर ने ऑगस्टीन के समय में रोम के पतन का उदाहरण दिया है।
रोम का पतन?
हाँ, जब रोम तबाह हो रहा था तो कुछ लोगों ने सोचा कि क्योंकि उनके सिक्कों पर ईश्वर का नाम लिखा है इसलिए उनका साम्राज्य बच जाएगा, पर अंदर से सिस्टम सड़ चुका था।
जैसे शाइलो शहर का विनाश हुआ था उस मंदिर का भी वही हश्र होना तय था। और जब आप सीधे तौर पर सिस्टम पर चोट करेंगे तो टकराव तो लाजमी है ना,
जो हमें आखिरी और सबसे रोचक भाग की तरफ ले जाता है, दृष्टांत और फंडे।
द मर्डरस टेनेंट्स की कहानी, जहां एक मालिक ने अपना अंगूर का बाग कुछ ठेकेदारों को दिया। यहां इसराइल को बाग और ठेकेदारों को ताकतवर साडुसियन इलीट्स बताया गया है।
प्राचीन जमाने में ऐसे लैंडलॉर्ड्स के पास अपनी प्राइवेट आर्मी या हत्यारे होते थे, और यहाँ वो ठेकेदार मालिक के दूतों की हत्या कर देते हैं।
दूत यानी मैसेंजर्स, जो कि प्रॉफिट्स थे, जिनकी इतिहास में सदियों से हत्या होती आई थी, जैसे जेजेबेल ने प्रॉफिट्स का कत्लेआम किया था,
या एंटोनिया फोर्ट्रेस में रोमन सोल्जर्स के साथ धोखा। ऐसे किस्से उस वक्त ताजा थे।
तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? मुझे समझ नहीं आता कि मालिक, जो ईश्वर का प्रतीक है, वो इतना भोला या नाइव क्यों लगता है। पता है कातिल है, फिर भी कहता है मैं अपने बेटे को भेजता हूँ।
यही तो बात है, ये इंसानी दिमाग के लिए समझना मुश्किल है, पर ये उसका भोलापन नहीं, उसकी असीम कृपा है।
आखिरी हद तक मौका देना।
हाँ, लेकिन जब एलीट्स को अपना चेहरा दिखाया तो उन्होंने शब्दों और कानून के ट्रैप्स बिछाने शुरू कर दिए, जैसे सबसे पहला सीजर का टैक्स।
अगर कहते टैक्स मत दो तो रोमन सेना मार देती, अगर कहते दो तो आम जनता नाराज हो जाती, क्योंकि सिक्के पर टिबेरियस को भगवान बताया गया था, है ना?
सही, पर जवाब काफी डिप्लोमेटिक था। उन्होंने कहा सीजर को वो दो जिस पर उसकी छवि है, और ईश्वर को वो दो जिस पर ईश्वर की छवि है।
यानी इंसान ईश्वर की इमेज में बना है, तो इंसान का पूरा जीवन ईश्वर का है। कमाल का जवाब। और दूसरा ट्रैप सैदुसीज का था ना?
हाँ, जो पुनरुत्थान या रेजरेक्शन में विश्वास नहीं करते थे।
उन्होंने वो सात पतियों वाली विधवा की अजीब सी कहानी सुनाई, जो टोबिट नाम की किताब से थी।
और जो कि सादुसी सिर्फ तोरा को मानते थे, किसी और किताब को नहीं, इसलिए उनके इस मजाक को खारिज करने के लिए सीधा तोरा से ही उदाहरण दिया गया
कि ईश्वर जिंदों का ईश्वर है, मुर्दों का नहीं। और फिर तीसरा ट्रैप आया, जो सबसे मुश्किल था। सबसे बड़ा कानून कौन सा है?
जवाब था शिमा, यानी ईश्वर से प्रेम, और दूसरा अपने पड़ोसी से प्रेम।
पर इन दोनों को जोड़ा कैसे गया? वहां एक अजीब सा शब्द था, गेजर हा शवा। ये तो कानूनी कोड जैसा लगता है, इसे थोड़ा आसान भाषा में बताइए ना।
गेजर हा शवा राबीज का एक कानूनी नियम था। अगर किताब के दो अलग नियमों में एक जैसा शब्द आए तो उन्हें जोड़ा जा सकता है।
वो तो दोनों जगह वायावत्ता यानी प्रेम करना शब्द आया था, इसलिए उन्हें जोड़ दिया गया।
एकदम, इलीट्स आए थे उन्हें फंसाने, पर खुद ही हार गए।
और इसके बाद तो उन पर उल्टा सवाल दाग दिया गया, साम 110 का हवाला देकर, कि डेविड अपने अनजाने में बेटे को प्रभु क्यों कहेगा। पर वेट, हमसे कहानी छूट रही है, द वेडिंग बैंक्वेट।
हाँ, राजा के बेटे की शादी। प्राचीन परंपराओं में डबल इनविटेशन का नियम होता था, जिसे हम RSVP कहते हैं।
अगर कोई आखिरी वक्त पर इनकार करे तो वो देशद्रोह या ट्रीजन माना जाता था, है ना?
और जो नया मेहमान बिना वेडिंग गारमेंट्स के आया, उसका क्या हुआ?
उसे आउटर डार्कनेस में फेंक दिया गया, जो कि कोई फिजिकल अंधेरा कमरा नहीं, बल्कि डिवाइन जजमेंट दर्शाता है।
सही। इन सब का निचोड़ यही है कि अधिकार सेवा से आता है, और आउटवर्ड रिलीजन किसी को पवित्र नहीं बना सकता।
तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए ये सीख मिलती है कि स्टेटस और दिखावा सब कुछ नहीं है। ये उस एक्सक्लूसिव क्लब जैसा है, जहां एंट्री तभी मिलेगी जब इंसान अपना घमंड बाहर छोड़ दे।
और कृपा कानून के खिलाफ लग सकती है, पर वही सबका बचाव है।
बिल्कुल। इस डीप डाइव को समाप्त करने से पहले एक आखिरी विचार जो मेरे दिमाग में चल रहा है, अगर कृपा वास्तव में अनफेयर है और सच्चे मार्ग का अर्थ दुख का प्याला पीना है, तो क्या आज जो लोग खुद को सबसे सफल मानते हैं, वही दरअसल उस बैंक्वेट के पहले मेहमान नहीं है जिन्हें बाहर कर दिया जाएगा, और जो लोग आखिरी थे वही टेबल के आगे बैठेंगे? दरवाजा खुला है, पर क्या कोई अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार है? इस पर आप लोग जरूर सोचिए। आज के लिए बस इतना ही।